السلام علیکم. آج جمعہ ہے، جنوری کی 19 تاریخ. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان اور ایران کے ایک دوسرے کی سرحدی حدود کے اندر حملوں کے بعد پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کا ٹیلیفونک رابطہ، ان حملوں کو واشنگٹن میں کیسے دیکھا جا رہا ہے، ایک فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کا متضاد موقف، امریکہ کا حوثی باغیوں کے فوجی ٹھکانوں کے خلاف 5واں حملہ، اور خطے اور دنیا بھر میں ہونے والے دیگر اہم واقعات کی خبریں ہمارے آج کے بلٹن میں شامل ہیں. لیکن سب سے پہلے ذکر پاکستان کا، جہاں آج ملک کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جمعے کو ٹیلی فون پر بات کی ہے. وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ان سے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ باہمی اعتماد اور تعاون پر تمام مسائل پر کام کرنے کے لیے تیار ہے. دفتر خارجہ کے مطابق جلیل عباس جیلانی نے ایران کے وزیر خارجہ سے سیکیورٹی معاملات پر قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا. پاکستان اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے کی سرحد کے اندر کیے جانے والے حملوں کے بعد کی صورتحال پر غور کے لیے آج پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اعلی سطحی اجلاس ہو رہا ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، جو اپنا غیر ملکی دورہ مختصر کر کے اسلام آباد واپس پہنچے ہیں. اجلاس میں پاکستان فوج کے سربراہ آصم منیر اور دیگر اعلی حکومتی عہدیدار شرکت کر رہے ہیں. اجلاس میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل کی صورتحال پر غور متوقع ہے. اس بارے میں ابھی تفصیلات آ رہی ہیں، جنہیں آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ سکتے ہیں. امریکہ نے پاکستان اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے کی فضائی حدود پر حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی نہیں دیکھنا چاہتا. امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی نے کہا کہ واشنگٹن ایران اور پاکستان کے درمیان جھڑپوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے تمام فریقوں پر تحمل سے کام لینے پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان کی جانب سے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعاون کی اہمیت پر دیے گئے بیانات تعمیری اور مفید ہیں. پاکستان نے جمعرات کو ایران کی حدود میں علیحدگی پسند عسکریت پسندوں پر حملے ایران کی طرف سے پاکستانی حدود کے اندر حملوں کے 2 دن بعد کیے تھے. پاکستان اور تہران دونوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے شدت پسند تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. دونوں حملوں میں مجموعی طور پر 6 بچے، 3 عورتیں اور 2 مرد ہلاک ہو گئے. طالبان کی وزارت خارجہ نے ایران پاکستان حالیہ کشیدگی کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے دونوں پڑوسی ملکوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں. طالبان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ طویل جنگوں اور عدم استحکام کے بعد دونوں فریقوں کو علاقائی استحکام کو مضبوط بنانے اور تنازعات کو سفارتی ذرائع اور بات چیت سے حل کرنے پر کام کرنا چاہیے. واضح رہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں گزشتہ سال کے دوران ہونے والے اضافے کے بعد پاکستان افغانستان تعلقات میں بھی تناؤ پیدا ہوا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور پناہ گاہوں کے بارے میں ٹھوس انٹیلیجنس اور معلومات کا افغان حکام سے تبادلہ کیا ہے، اور افغان حکام ان افراد سے مکمل طور پر واقف ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز سہرا بلوچ نے جمعرات کو اسلام آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ افغان حکام دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کر کے انہیں پاکستان کے حوالے کریں اور یقینی بنائیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان اور وسیع خطے کے خلاف دہشت گردی کا مرکز نہیں بنے گی. دفتر خارجہ کے ترجمان نے افغانستان کے ساتھ پاکستان کی تورخم سرحد کھولنے کو پاسپورٹ اور درست ویزے سے مشروط کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ افغان پڑوسی पाकिस्तान का सफर करते हुए दुरुस्त दस्तावेजात रखने की अहमियत को समझेंगे और पाकिस्तान का मौकिफ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान लोगों की नकलो हरकत दुरुस्त वीजे और शनाख्ती दस्तावेज की बुनियाद पर होनी चाहिए, जो दुनिया भर में इमिग्रेशन का एक काबिल कबूल तरीका है। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल अक्टूबर में नाफिज की गई गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों के इनखला की पॉलिसी के बाद से अब तक तकरीबन 5 लाख अफराद को मुल्क से बेदखल किया जा चुका है, जिसमें ज्यादातर अफगान बाशिंदे हैं। पाकिस्तान के इस फैसले के हवाले से अफगान हुकाम और सरहद के दोनों तरफ तिजारत से मुंसलिक तबके की तरफ से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अमरीका ने इसराइली वजीर आजम की तरफ फलस्तीनी रियासत के क्याम की मुखालिफत को मुस्तरद करते हुए कहा है कि फलस्तीनियों को एक आजाद रियासत में अमन और सलामती के साथ रहने का पूरा हक है। नेतन्याहू ने जुमेरात को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में फलस्तीनी रियासत के क्याम के तस्वुर को मुस्तरद किया था और फलस्तीनी इलाकों पर इसराइल के सिक्योरिटी कंट्रोल पर इसरार किया था। अमरीका गजा जंग के बाद फलस्तीनी इलाके के लिए नेतन्याहू के विजन से इख्तलाफ करता है और फलस्तीनी रियासत के क्याम के मंसूबे पर काम कर रहा है। यमन के हौसी बागियों ने जुमे के सुबह बहर अहमर में एक और अमरीकी जहाज को निशाना बनाने का दावा किया है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि उन्होंने खलीज अदन में एक कमर्शियल बैरी जहाज को कई मिसाइलों से निशाना बनाया है। बयान में हमले का वक्त नहीं बताया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जुमेरात की रात एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा था कि हौसी बागियों ने अमरीकी मिल्कियत वाले एक ऑयल टैंकर को 2 एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का निशाना बनाया, जिन्हें अमरीकी नेवी के FA-18 लड़ाका तैयारों ने मार गिराया। मिसाइल टैंकर के करीब पानी में गिरे, लेकिन टैंकर का तमाम अमला महफूज रहा। ऑयल टैंकर को, जो सऊदी अरब से कुवैत जा रहा था, एक यूनानी कंपनी इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ हौसी बागियों के एक सीनियर एहलकार मोहम्मद अल बखीती ने रूसी खबर रसा इदारे एजवेस्तिया के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि यमन के इर्द गिर्द की शिपिंग लेन चीन और रूस के बैरी जहाजों के लिए उस वक्त तक महफूज रहेंगी जब तक कि इन बैरी जहाजों का कोई ताल्लुक इसराइल से नजर नहीं आता। सदर बाइडेन ने जुमेरात को कहा था कि अमरीका हौसी बागियों पर हमले जारी रखेगा और अमरीकी और बरतानवी बमबारी ने बहरे अहमर में जंगजुओं की बहरी जहाजों पर हमलों का सिलसिला रोका है, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। शिमाली कोरिया ने कहा है कि उसने इस हफ्ते जनूबी कोरिया, अमरीका और जापान के दरमियान मुश्तरका बहरी मशकों के जवाब में जेरे आब जौहरी हमला करने वाले ड्रोन का तजर्बा किया है। ये मुबैना ड्रोन तजर्बा शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के उस ऐलान के चंद दिन बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जनूबी कोरिया के साथ पुरअमन इत्तेहाद के अपने मुल्क के देरीना मकसद को खत्म कर देंगे और ये कि उनका मुल्क अपने आईन को दोबारा लिखेगा ताकि जनूबी कोरिया को उसके सबसे ज्यादा मुखालिफ मुल्क के तौर पर बयान किया जा सके। शिमाली कोरिया अपने हरीफों पर खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का इल्जाम आयद करता है। नेटो दूसरी जंग अजीम के बाद इस हफ्ते के आखिर में अपनी सबसे बड़ी फौजी मशकों का आगाज कर रहा है। महीनों तक जारी रहने वाली इन मशकों में तकरीबन 90,000 अहलकार हिस्सा लेंगे। मशकों का मकसद यह है कि नेटो इत्तेहाद रूस के साथ सरहद तक अपने तमाम इलाके का दिफा कर सकता है। मशकें ऐसे वक्त पर की जा रही हैं जब यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग के आगाज को 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को एक अहम फैसला सुनाते हुए 2002 के गुजरात फसादात के दौरान एक खातून बिल्किस बानो के इज्तिमाई ज्यादती और कत्ल केस में उम्र कैद की सजा का सामना करने वाले तमाम 11 कैदियों को अपने आप को जेल हुकाम के हवाले करने की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त मेरिट न होने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी है और उन्हें 21 जनवरी तक जेल जाने का हुक्म दिया है। 9 कैदियों ने अपनी दरख्वास्त में 6 हफ्तों की तौसी मांगी थी, जबकि एक कैदी ने 4 हफ्तों की तौसी की दरख्वास्त की थी। इन तमाम कैदियों को 14 साल की कैद के बाद रिहा किया गया था। लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने चंद हफ्ते कबल उनकी उम्र कैद की सजा बहाल करके उन्हें दोबारा जेल भेजने का हुक्म दिया था। अमरीका की मुतअद्दिद रियासतों को इस हफ्ते शदीद सर्द मौसम और बर्फबारी का सामना है। रियासत टेनेसी के कुछ हिस्से बर्फबारी के साथ खतरनाक तूफान की वजह से कम अज कम 14 अमवात का सबब बने हैं। दर्जे हरारत में कमी और बर्फबारी के बाद टेनेसी समेत मुतअद्दिद अमरीकी रियासतों में स्कूल और सरकारी दफातर बंद कर दिए गए हैं। कई रियासतों में मकामी हुकूमतों के दफातर बंद कर दिए गए हैं। न्यूयॉर्क के इलाके रॉचेस्टर में अमरीकी एयरलाइन का एक तैयारा बर्फ की वजह से लैंडिंग के बाद टैक्सी करते हुए फिसल गया। ताम किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। जापान का मून साय पर नामी खलाई जहाज आज वॉशिंगटन के वक्त के मुताबिक 10:30 बजे पिन पॉइंट टेक्नोलॉजी की मदद से चांद पर उतरने की कोशिश कर रहा है। जापान अपने स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन के साथ पहली मर्तबा चांद की गैर हमवार सतह पर उतरने के लिए एक बड़ी खिलौना साज कंपनी के तैयार करदा रोलिंग रोबोट की मदद ले रहा है। इस इंतहाई मुश्किल लैंडिंग को इंतहाई महारत से मुमकिन बनाने का अमल खलाई जहाज को 20 मिनट में मुकम्मल करना होगा। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर ताबिंदा नईम के हमराह खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।